हरे कृष्ण श्रीमद् भागवत गीता चैप्टर 18 टेक्स्ट नंबर 2। इस आध्यात्मिक ज्ञान को समझने के लिए आध्यात्मिक तरातर पर आना होगा और उसके लिए हमें बहुत सारे आशीर्वाद और कृपा की आवश्यकता है। तो कृपा की याचना करने के लिए हृदय की समस्त मलिनता और बुद्धि से भौतिक विचारों का परित्याग करके पूरी श्रद्धा प्रेम और भाव के साथ मंगलाचरण करेंगे, ताकि हम जो अध्ययन करने वाले हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके और कृष्ण प्रेम की प्राप्ति कर सके। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यामनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यम् ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्दे अहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातम् सह कणरघुनाथन् वितं तं सजीवम् सात्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधा कृष्णपादं सह कणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णकरुणासिन्धु दीनबन्धु जगत्पति गोपेश गोपीकान्ता श्रीराधाकान्त नमोऽस्तु ते। तप्तकाञ्चनं गारङ्गे श्रीराधे वृन्दावनेश्वरि वृषभानो सूते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यस्य कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैतं गदाधरं शिवासदी गौरभक्तवृन्दा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रीमद्भगवद्गीता मात की जय हो। हमारा परम सौभाग्य है कि हम सब यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से गाया हुआ यह गीत यानी श्रीमद् भागवत गीता श्रवण करने के लिए एकत्रित हुए हैं। गीता का अर्थ ही होता है गीत, परंतु ये कोई साधारण गीत नहीं है। अब आप पूछोगे क्या अंतर है संसार के साधारण गीत और श्रीमद् भागवत गीता में, उसका उत्तर है संसार के जो साधारण गीत होते हैं ना, वो कुछ समय के लिए तो अच्छे लगते हैं, लेकिन फिर बहुत पुराने हो जाते हैं। और कोई नया गीत आता है तो फिर हमको वो नए गीत ज्यादा आकर्षित करते हैं। जैसे आज से 100-200 साल पहले के गाने अब कोई सुनना पसंद नहीं करेगा, मगर ये जो भगवान का गीत है वो हजारों सालों से संत महात्मा गाते आ रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण चौथे अध्याय में बताते हैं, 4.1 में भगवान ने बताया कि कितना पुराना गीत है मेरा। भगवान कहते हैं, एमं विवस्वति योगं प्रोक्तवान अहम् अव्ययम् विवस्वान् मनविप्राहु मनोरिक्षवाकविब्रवीत। मैंने इस अमर योग्य विद्या का उपदेश सूर्यदेव विवस्वान को दिया। विवस्वान ने मनुष्यों के पिता मनु को उपदेश दिया और मनु ने इसका उपदेश इक्ष्वाकु को दिया। अर्थात कितना पुराना है यह गीत, और आज भी संत महात्मा हजारों सालों के बाद भी उतने ही उत्साह के साथ यह गीत सुनते हैं, पढ़ते हैं, गाते हैं। और आज की नई पीढ़ी इसका उदाहरण है, ज्वलन प्रमाण है कि आप सब इतने उत्साह से इस गीत को सुनने के लिए एकत्रित हुए हो। इसीलिए शास्त्र कहता है, यत् श्रुमताम रसज्ञानाम स्वादु स्वादु पदे पदे। यह भगवान के द्वारा जो गिराया हुआ गीत है ना, यत् श्रुमताम रसज्ञानाम, इसे सुनकर इतना रस है इसके अंदर कि जो उसको सुनता है, स्वादु स्वादु पदे पदे, प्रत्येक पद पर, प्रत्येक अध्याय में, प्रत्येक श्लोक में, प्रत्येक शब्द में, प्रत्येक चरण में स्वादु स्वादु, इतना अत्यंत आनंद प्राप्त होता है। शास्त्रों में तो यहाँ तक कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति भगवान के इस गीत का खाली अध्ययन करता है तो भगवान को अपने पास बुला लेता है। श्रीमद् भगवद गीता का जहाँ पर पाठ होता है निश्चित रूप पर, वही भगवान भी होते हैं और वही भक्त भी होते हैं। याद है आपको, जब युद्ध भूमि में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यह गीत सुना रहे थे तो भगवान के परम भक्त हनुमान जी भी युद्ध में आ गए थे। भगवान वेद व्यास जी कहते हैं, यत्र गीता विचारस्य पठनम पाठनम श्रुतम। यत्र गीता, यदि कोई गीता का विचार करता, खाली गीता के विषय में बात करता है, पठनम उसका पाठ करता है, पाठनम उसको पढ़ता है, श्रुतम उसको सुनता है, खाली वह व्यक्ति जो गीता के विषय में विचार करता है, उसका पाठ करता है, उसको पढ़ता है, उसको सुनता है, फिर क्या होता है? भगवान कहते हैं, वेद व्यास जी ने बताया, तत्राहम निश्चितम पृथ्वीम। वह पृथ्वी का वह स्थान जहाँ पर ऐसा हो रहा है, कैसा हो रहा है, यत्र गीता विचारस्ता, गीता के विषय में विचार हो रहा है, उसका पाठ हो रहा है, उसको पढ़ा जा रहा है, उसको सुना जा रहा है, उसका बखान किया जा रहा है, तत्राहम निश्चितम पृथ्वी, वहां पर निश्चित रूप से क्या होता है? भगवान कहते हैं, निवस्वामी सदैव ही, मैं वहां पर सदैव निवास करता हूँ जहां पर गीता के विषय में बात हो रही है, गीता को पढ़ा जा रहा है, गीता को सुना जा रहा है, गीता का पाठ किया जा रहा है। मैं वहां से दूर हो ही नहीं सकता, क्योंकि भगवान के शब्द और भगवान स्वयं एक ही है। इसका अर्थ ये है कि हमारे बाजू में कहीं ना कहीं भगवान बैठे हैं और अपनी ही गीता का श्रवण कर रहे हैं, क्योंकि शास्त्र ने कह दिया, तत्राहम निश्चितम पृथ्वी निविस्वामी सदैव ही, मैं सदैव वहीं पर रहता हूँ जहाँ पर मेरी गीता के विषय में बात होती है, गीता को पढ़ा जाता है, गीता को श्रवण किया जाता है। तो इसीलिए जो आचार्य गण होते हैं ना, जब वो कथा करते हैं, गीता कहते हैं, तो एक आसन अलग से रखते हैं। भगवान चाहते हैं अपनी कथा को सुनना। यदि आपको विश्वास नहीं आ रहा तो जगन्नाथ जी को ले दीजिए, रोहिणी मैया ने सुभद्रा को पहरे पर बिठाया और कृष्ण की कथा सुनानी शुरू कर दी। तब और है ना, जब रोहिणी मैया सारी रानियों को कथा सुना रही थी तो कृष्ण आ गए और सुभद्रा को बोला हमें अंदर जाना है। तो फिर सुभद्रा ने बोला आपको अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। कृष्ण ने बोला क्यों नहीं जाने दिया जाएगा, अंदर क्या हो रहा है? बोला जो भी हो रहा है आपको अंदर जाने नहीं दिया जाएगा। कृष्ण ने बोला चलो ठीक है नहीं जा रहा हूँ, लेकिन बताओ तो सही अंदर क्या हो रहा है। जब सुभद्रा ने बताया कि भैया अंदर आपकी कथा हो रही है, जब कृष्ण ने यह सुना कि मेरी कथा हो रही है तो कृष्ण रुक नहीं सके और वहीं पर जगन्नाथ जी के स्वरूप में पिघलते गए कानों से जब भगवान की कथा को उन्होंने सुना, अपनी कथा। भगवान को बहुत अच्छा लगता है अपने बारे में सुनना। जब तो उन्होंने कहा है तत्राहम निश्चितम पृथ्वीम नैव स्वामी सदैव ही, इसलिए जहाँ पर मेरी कथा होती है, जहाँ पर मेरी भगवत गीता का उच्चारण होता है, पाठ होता है, वहाँ पर मैं निश्चित रूप से होता हूँ। जहाँ भगवान का नाम हो, कथा हो, भगवान निश्चित रूप से वहीं होते हैं। एक बार नारद जी ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि मुझे आपका एड्रेस चाहिए, अगर आप ना कोई विजिटिंग कार्ड है आपका तो दे दीजिए मुझे। तो भगवान ने कहा विजिटिंग कार्ड तो नहीं है मेरे पास, कोई प्रिंटिंग प्रेस वाला मिला नहीं, इसे बनाया नहीं। तो बोले चलो ठीक है मुझे बता दीजिए मैं लिख लेता हूँ। एड्रेस पेन निकाली तो भगवान को बोले चलो ठीक है बताओ नहीं क्योंकि मुझे पता है आपका एड्रेस। तो बोला अच्छा आपको पता है तो बताओ कहाँ रहता हूँ। तो बोला वैंकुट में रहते हो, और कहाँ रहते हो? वैंकुट का एड्रेस बता दूंगा सबको। तो भगवान ने कहा नाहम वसामी वैकुंठे। नारद जी मैं वैकुंठ में नहीं रहता हूँ। नारद ने कहा अच्छा तो फिर हाँ दिन रात जो आपके आपकी तपस्या करते हैं ना योगी, उनके हृदय में रहते होंगे। बस समझ में आ गया मुझे आप वहीं रहते हो। तब कृष्ण ने कहा योगी नाम हृदय शुवा, योगियों के हृदय में भी नहीं रहता हूँ। अब तो नारद जी परेशान हो गए, बोला प्रभु अब तो लिखना ही पड़ेगा, बताओ कहाँ रहते हो, मैं लिख लेता हूँ। तब भगवान ने कहा मद भक्ता यत्र गायन्ते, जहाँ पर मेरे भक्त मेरे नाम का कीर्तन करते हैं, मेरी कथा का गान करते हैं, तत्र ष्ठामि नारद, मैं वही रहता हूँ नारद और कहीं नहीं रहता। तो जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की कथा होती है, जहाँ पर भगवत गीता होती है, निश्चित रूप से भगवान श्री कृष्ण वही होते। इसलिए हम बोलते ना कि आज भगवान श्री कृष्ण बताएंगे, अब है तो बताएंगे ना। जैसे कल हमने श्लोक पढ़ा था श्लोक नंबर 1, उसमें अर्जुन ने भगवान से प्रश्न किए थे, दो प्रश्न किए थे ना। अर्जुन ने पूछा संन्यासस्य महाबाहो तत्वम इच्छामि वेदितुम, हे महाबाहो मैं संन्यास के तत्व को जानने का इच्छुक हूँ, और दूसरी बात त्यागस्य च ऋषिकेश, त्याग के मकसद को भी जानना चाहता हूँ, पृथक केशनी सुदना, भिन्न रूप से इन दोनों को अलग अलग रूप से जानना चाहता हूँ, त्याग को और संन्यास को। अब भगवान होंगे तो रिप्लाई करेंगे। तो भगवान ने कहा कि मैं वही होता हूँ, कहाँ होता हूँ, यत्र गीता विचारस्थ पठनम पाठनम श्रुतम तत्राहम निश्चितम पृथ्वी निवसामि सदैव ही, जहाँ पर गीता पढ़ी जाती है, पाठ किया जाता है, विचार किया जाता है, वहां पर मैं होता हूँ। आज भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर हैं और वह अर्जुन के इस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। श्रीमद् भगवत गीता चैप्टर 18 टेक्स्ट नंबर 2, श्री भगवान उवाच काम्यानां कर्मणां न्यासम् संन्यासं कवयो विदुः सर्वकर्म फलत्यागं प्राहुस्त्याग विचक्षणाः। अर्जुन ने जो भगवान से प्रश्न पूछे थे, आज भगवान बहुत ही सुंदर रीति से उनके उत्तर दे रहे हैं। भगवान कहते हैं काम्यानां, काम्यानां का मतलब होता है काम्य कर्म, यानी जो सकाम कर्म होते हैं ना, भौतिक इच्छाओं से भरे हुए जो कर्म होते हैं, काम्यानाम कर्मणाम, जो काम्य कर्मों का, कर्मणाम मतलब कर्मों का, न्यासम, न्यास कहते जैसे सन्यास होता है ना, वैसे न्यास का मतलब होता है त्याग करना। सन्यासम यानी सन्यास, कवयो, कवयो बोलते हैं विद्वान, जो विद्वान होते हैं ना, जिनके पास विद्या बहुत ज्यादा होती है उनको बोलते हैं कवयो। विदुहु जानते हैं, यानी कि जो विद्वान लोग जानते हैं, विद्वान लोग हैं वो जानते हैं कि भौतिक इच्छाएं वालों सारे कर्म को परित्याग करने को त्याग कहते हैं। और आगे सर्व कर्म फल त्यागम, सर्व मतलब समस्त, कर्म मतलब कर्मों का फल, अर्थात जो रिजल्ट है सारे कर्मों का रिजल्ट जो है त्यागम, त्याग करने को। प्राहुस, प्राहु का मतलब होता है कहना, जैसे हम बोलते हैं ना उसको बोलते हैं प्राहु। त्यागम, त्याग। विचक्षण, अनुभवी, विचक्षण का मतलब होता है जिनके जो बहुत अनुभवी होते हैं, जिनके पास बहुत ज्यादा बुद्धि होती है, जिन्होंने बहुत कुछ सीखा हुआ है। अब अर्जुन ने भगवान से पूछा है और भगवान बता रहे अपनी बात नहीं है, भगवान ने देखो दो चीजें बताई, काम्यानाम कर्मणाम नास्यम, संन्यासम कवयो विधु। विधु जो होते हैं, जो जो विद्वान होते हैं, देखो भगवान अब पहले अनुवाद पढ़ते फिर देखते भगवान ने क्या बोला। भगवान ने कहा भौतिक इच्छाओं पर आधारित कर्मों के परित्याग को विद्वान लोग संन्यास कहते हैं। यानी कि ये मेरी राय नहीं है, ये किसकी राय है? विद्वान लोग किसको बोलते हैं? जो भौतिक इच्छाओं पर आधारित जितने भी कर्म है, यानी सारे कर्मों को ही त्याग दिया जाए, जो भी भौतिक इच्छाओं पर आधारित कर्म है उनको त्याग दिया जाए, उनको विद्वान लोग क्या बोलते हैं? इस बात को संन्यास बोलते हैं। अब अर्जुन ने पूछा था ना संन्यास के विषय में जानना चाहता हूँ, तो भगवान ने बोला जो विद्वान लोग होते हैं वो कहते हैं कि भौतिक इच्छाओं पर आधारित सारे कर्मों को परित्याग कर दो, इसको संन्यास कहते हैं। और आगे सर्व कर्म फल त्यागम प्राहुस त्यागम विचक्षण, यानी समस्त कर्मों के फल को त्याग देना। सर्व कर्म फल त्यागम यानी सारे कर्मों के फलों को त्याग देने को प्राहुस त्यागम विचक्षणा, विचक्षणा मतलब बुद्धिमान लोग त्याग कहते हैं। अब यहाँ पर भगवान ने कहा बुद्धिमान लोग त्याग किसको बोलते हैं? कि सारे कर्मों के फलों को त्याग दो। और विद्वान लोग संन्यास किसको बोलते हैं? कि सारे भौतिक इच्छाओं पर आधारित सारे कर्मों को त्याग दो। यानी कि भगवान ने अभी तक अपनी बात नहीं बताई है, विद्वानों और बुद्धिमानों की बात बताई है। अब आगे भगवान अपने बारे में बाद में बताएंगे, आज का श्लोक तो यहीं पर है। भगवान ने कहा भौतिक इच्छाओं पर आधारित कर्मों को परित्याग करने को विद्वान लोग संन्यास कहते हैं और समस्त कर्मों के फल को त्याग करने को बुद्धिमान लोग त्याग कहते हैं। श्रील प्रभुपाद जी बहुत ही सुंदर रीति से समझाएंगे। श्रील प्रभुपाद की जय हो। कर्म फल की आकांक्षा से किए गए कर्म का त्याग करना चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं जो भी कर्म आप करते हो उसमें कर्म फल की आकांक्षा नहीं होनी चाहिए। आप ये नहीं सोचो कि मैं ये कार्य करूंगा उसकी बदले में मुझे यह फल मिलेगा। यह सकाम कर्म होते हैं, इनको काम्यानाम कर्म भी कहते हैं। और यह कर्म क्यों नहीं करने चाहिए, इनका त्याग क्यों करना चाहिए? क्योंकि ये आपको फंसाएंगे ना, क्योंकि जब फल मिलेगा तो अच्छा फल मिलेगा तो भी आप फंस जाओगे, वापस जन्म लेना पड़ेगा या फिर उसके अंदर आसक्ति उत्पन्न हो जाएगी। तो फिर ऐसा कोई कर्म नहीं करना चाहिए। श्री प्रभुपाद जी साफ साफ बोलते हैं कर्म फल की आकांक्षा से किए गए कर्म का परित्याग करना चाहिए, यही भी भगवद गीता का उद्देश्य है। गीता का उद्देश्य है कि आप भगवान श्री कृष्ण बहुत ही सुंदर इस चीज को बताते हैं, चैप्टर 2 टेक्स्ट नंबर 47, बहुत ही सुंदर श्लोक, इतने सुंदर शब्द हैं भगवान के, यदि यह भी समझ में आ जाए ना तो समझो बहुत कुछ समझ लिया। ये बहुत ही सुंदर श्लोक है, हमें इसको समझना चाहिए। और भगवान इसमें कहते हैं 2.47 कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भो मा ते संगोस्त्व कर्मणि। अर्थात कृष्ण ने कहा तुम्हें अपना कर्म करने का अधिकार है, यानी कि कर्म तो तुम कर सकते हो, ये तुम्हारी ड्यूटी है, तुम्हारा अधिकार, तुम्हारा फर्ज है, किंतु कर्म के फलों में तुम अधिकारी नहीं हो। कर्म के फल का अधिकार केवल कृष्ण को है, और हमें नहीं है, हमें सिर्फ अपना कर्म करना है, जो ड्यूटी है। वी आर सर्वेंट ऑफ भगवान के, हम सर्वेंट हैं, हम कृष्ण के अंश हैं, कृष्ण के दास हैं। तो दास का कर्तव्य क्या होता है कि वो अपनी ड्यूटी करे। इससे क्या रिजल्ट निकलने वाला है वो दास का अधिकार नहीं है, वो तो स्वामी का अधिकार है जो रिजल्ट उसको देगा। तुम ना तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फलों का कारण मानो, कारण भी नहीं मानना है कि इसका कारण, बस मैं कैसे अपने कृष्ण को, अपने स्वामी को प्रसन्न करूं। दास का एक ही कर्तव्य होता है, ना ही कर्म ना करने में कभी आसक्ति रखो। ये नहीं सोचना है कि मेरे स्वामी ने मुझे ये कार्य बोला है करने के लिए और मैं वो ना करूं, ये भी नहीं सोचना है। आपको बस स्वामी की आज्ञाओं का पालन करना है और उसके बाद उसका क्या रिजल्ट निकलता है उसके बारे में आपको नहीं सोचना है। यही चीज भगवान यहाँ पर हमें बता रहे हैं, श्री प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि यही गीता का उद्देश्य है कि कर्मों के फलों में कोई भी आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। और लेकिन जिन कर्मों से उच्च आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हो उनका परित्याग नहीं करना चाहिए। लेकिन अब देखो भगवान ने जैसे बोला था ना कि ना ही अपने कर्म ना करने में आसक्ति रखो। कर्म आपको करना है उच्च फल की प्राप्ति, मतलब जो भगवान ने हमें आदेश दिए हैं कि आपको ये यज्ञ दान इत्यादि जो कर्म आगे बता दे जाएंगे भगवान। लेकिन अभी श्री प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं, जिन कर्मों से उच्च आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हो, यानी कि हमारी मंजिल है उसके विषय में यदि हमें पता चलता है जिन कर्मों के विषय में, उनका परित्याग कभी नहीं करना चाहिए। और श्री प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि अगले श्लोकों में ये बहुत स्पष्ट रूप से बता दिया जाएगा। आगे जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे तो इस चीज को भगवान बहुत ही क्लियर बताएंगे कि किन किन चीजों को हमें त्यागना नहीं चाहिए और किन किन चीजों का परित्याग करना चाहिए। आगे बताते हैं श्री प्रभुपाद जी, कहते हैं वैदिक साहित्य में किसी विशेष उद्देश्य से यज्ञ संपन्न करने की विधियों का उल्लेख है। अब वेद जो है वो बहुत सारे हैं, अब वेदों में बहुत सारे सकाम कर्मों के विषय में भी बताया गया है कि यदि आप इस तरह से यज्ञ करोगे तो उसकी वजह से आपको कोई चीज में, जैसे वैदिक साहित्य किसी विशेष उद्देश्य, कोई ना कोई आपकी भौतिक इच्छा पूरी करने के लिए यज्ञ संपन्न करने की बताए गए हैं, विधि बताई गई है। अब कुछ यज्ञ ऐसे हैं जो अच्छी संतान प्राप्त करने के लिए या स्वर्ग की प्राप्ति करने के लिए किए जाते हैं। साफ साफ बताया कि अब वेद है, वेद ना आपकी मनुष्य मानव सभ्यता की मनोवृत्ति को देखकर बनाए गए। अब यहाँ पर हम ये क्वेश्चन कर सकते फिर वेदों में ऐसा लिखा हुआ है क्यों है, इसलिए लिखा हुआ है कि लोग डायरेक्ट से भगवान की पूजा में रुचि नहीं लेते हैं। डायरेक्ट से उनको कह दिया जाए कि भाई कोई चीज आपको सकाम कर्म नहीं करने हैं, अपनी भौतिक इच्छाओं के अनुसार कोई कार्य नहीं करना है, बस भगवान की भक्ति करनी है और कोई आपके मनुष्य जीवन का उद्देश्य नहीं, तो हर चीज हर व्यक्ति को ये चीज समझ में आने वाली नहीं है। तो इन्हीं सकाम कर्मों के जरिए ही वो जब यज्ञ करते हैं, करते 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 वो समय के बाद जब उनका हृदय पवित्र होता है और फिर उनको यह रियलाइज होता है कि वाकई में ये सारी चीजें प्राप्त करने के बाद भी संसार में सुख नहीं है, केवल कृष्ण भक्ति में ही हमें सुख प्राप्त। तो ये है ना स्टेप वाइज वेदों में बताया गया। वेदों में क्या है, आप जिधर खड़े हो उधर से आपको लेकर जाते हैं डायरेक्ट से। जैसे दो तरीके होते हैं, श्री प्रभुपाद जी बताते हैं कि अगर आप टॉप फ्लोर पे जाना चाहते हो उसके दो तरीके हैं। क्या, एक तो आप सीढ़ी से चढ़ के जाओ, एक एक कदम करके, एक एक स्टेप करके 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 आप ऊपर टॉप फ्लोर पे जाओ। या फिर दूसरा तरीका क्या है कि आप लिफ्ट में बैठ जाओ, फौरन से ऊपर चढ़ जाओ। जब किसी शुद्ध भक्त गुरु अथवा कृष्ण की कृपा प्राप्त हो जाती है, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं ब्रह्मांड भ्रम्यते कौन भाग्यवान जीव। ब्रह्मांड में करोड़ों करोड़ों जीव हैं और उनमें से कोई एक ही भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण कृपा पाइए भक्ति लता बीज। ये जो भक्ति लता का बीज आपको प्राप्त हुआ है ना, वो हर किसी को नहीं होता प्राप्त। गुरु और कृष्ण की कृपा का बीज जो है करोड़ों करोड़ों भटकते हुए जीवों में से किसी एक को प्राप्त होता है, और वो भक्ति लता का जब बीज उसको प्राप्त होता है तो आगे कहते हैं कि फिर उस अब आपको स्टेप वाइज चढ़ने की जरूरत नहीं है, बस बीज मिल गया आपको, इसको अपने हृदय में बो दो, इसका संचार करो। किससे, श्रवणम कीर्तनम जले संचनम, आपको श्रवण और कीर्तन करना है, बस भक्ति मिल गई कृष्ण के विषय में, आपको पता चल गया, आपको ये खबर पड़ गई कि आपके जीवन का लक्ष्य कृष्ण प्रेम की प्राप्ति है। अब जो हृदय में जो इतना छोटा सा बीज आपको मिला है ना, इसको हृदय में बोलो और दो काम करो खाली, श्रवणम कीर्तनम जले संचनम, श्रवण और कीर्तन के जल से इसको संचन करो, फिर ये भक्ति लता का जो बीज है ना ये इतना बड़ा होता जाएगा, छोटा सा पहले कोंपल निकलेगी उसमें से पौधा बड़ा होगा और बढ़ते 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 सारे आसमानों को चीर देगा, और जहां पर गोलोक वृंदावन धाम में कृष्ण है उसमें से एक फूल निकलेगा, जो ये जो बीज है ना आपके पास उसमें एक बीज निकलता जाएगा और ऊपर जाता जाएगा जाता जाएगा जाता जाएगा, जहां पर परम धाम में भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंद है ना, वहां पर जाके यह फूल, यह जो पुष्प भक्ति लता के बीज से अंकुरित हुआ होगा ना, वो भगवान के चरणारविंदों में समर्पित हो जाएगा। करना क्या है, बस हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, बस इस महामंत्र का कीर्तन करते जाना है और भक्तों के मुखारविंद से इसकी महिमा को और कृष्ण की महिमा लीलाओं इत्यादि को श्रवण करना है। आपकी भक्ति लता के बीच से निकलते हुए उस पुष्प को अपनी मंजिल स्वतः मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पर बताया गया कुछ यज्ञ ऐसे होते हैं जो अच्छी संतान प्राप्त करने के लिए, स्वर्ग को प्राप्त करने के लिए किए जाते हैं, लेकिन जो यज्ञ इच्छाओं के वशीभूत हो उनको बंद कर देना चाहिए। श्री प्रभुपाद जी बोलते अब यहाँ तक पहुंच गए हैं, 18वां अध्याय पढ़ रहे हैं, इतना तो समझ जाना चाहिए कि ये सारी भौतिक इच्छाओं से मलिनता से जो ग्रस्त कर्म है, जो यज्ञ भी है, उनको बंद कर देना चाहिए। परंतु आध्यात्मिक ज्ञान में उन्नति या हृदय की शुद्धि के लिए किए जाने वाले यज्ञों का परित्याग करना उचित नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो आध्यात्मिक ज्ञान में उन्नति करने वाले जो यज्ञ हैं और हृदय की शुद्धि, और हृदय की शुद्धि के लिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं चेतो दर्पण मार्जनम हरिनाम संकीर्तनम, यह जो हरिनाम संकीर्तन महायज्ञ है ना उससे आपके हृदय की शुद्धि होती है। तो श्री प्रभुपाद जी संकेत मात्र से केवल यही बताना चाह रहे हैं कि आध्यात्मिक ज्ञान में उन्नति, और आध्यात्मिक ज्ञान में उन्नति कैसे होगी वो कौन कहते, भगवान श्री कृष्ण बताते 10.10 में, तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीति पूर्वकं ददामि बुद्धि योगं तं येन माम उपयान्ति ते। यदि आपको बुद्धि योग चाहिए, आध्यात्मिक ज्ञान में उन्नति करना चाहते तो क्या करो, तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीति पूर्वकं, प्रेम और श्रद्धा के साथ मेरे नाम का भजन करो। अब देखो दो चीजों के लिए यज्ञ करने की संस्तुति की जा रही है यहाँ पर, और दोनों का अर्थ क्या होता है, देखो वापस इस लाइन को पढ़े, परंतु आध्यात्मिक ज्ञान में उन्नति कैसे होगी 10.10 में भगवान ने बताया मेरे नाम का भजन करने से, या हृदय की शुद्धि के लिए कैसे होगा, चैतन्य महाप्रभु ने बताया चतुर्दर्पण मार्जनम हरिनाम संकीर्तनम, इसके लिए किए जाने वाले यज्ञों का परित्याग करना उचित नहीं। यानी कि श्रील प्रभुपाद जी बोलते करना है तो केवल एक ही यज्ञ करो जो इस कलयुग का एकमात्र यज्ञ है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के उत्तर प्रश्न का उत्तर देना स्टार्ट किया है। अभी सिर्फ एक बात ही बताई कि जो बुद्धिमान लोग होते हैं, विद्वान लोग होते हैं, वो कहते हैं कि भौतिक इच्छाओं पर आधारित सारे कर्मों को त्याग देना चाहिए, और जो बुद्धिमान होते हैं वो कहते हैं उसको त्याग कहते हैं, ठीक है, जो भौतिक इच्छाओं पर आधारित कर्म होते हैं उन कर्मों को त्याग करने को विद्वान लोग संन्यास कहते हैं। यानी कि अगर आज ये जो श्रील प्रभुपाद ने बताया है कि वो सारे कर्म त्याग दो जो भौतिक इच्छाओं पर आधारित है, तो ये बुद्धिमानों का मत है कि इसी को संन्यास कहते हैं। संन्यास आज के इस कलयुग में ऐसा नहीं है कि आप सब कुछ छोड़ दो और जंगल में चले जाओ, संन्यास का मतलब बता रहे श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पर, यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि विद्वान लोग कहते हैं कि आप अगर भौतिक इच्छाओं पर आधारित कर्मों को त्याग दोगे तो वही संन्यास है। संन्यास का मतलब ये नहीं कि आप गहरू कलर के कपड़े पहन लो और कमंडलू उठाकर और डंडी उठाकर घूमते रहो, ये नहीं। यहाँ पर साफ साफ कहा गया काम्यानाम कर्मणाम न्यासम संन्यासम कवयो विदु। विदु लोग कहते हैं, जो विद्वान लोग होते हैं वो कहते हैं कि भौतिक इच्छाओं का परित्याग करने वाले कर्मों का परित्याग करने को ही संन्यास कहते हैं। और दूसरी बात, समस्त कर्मों के फल को त्याग करने को बुद्धिमान लोग त्याग कहते हैं। अब त्याग किसको कहते हैं? इसका मतलब ये नहीं कि आप कर्म करना ही छोड़ दो, ये जो ऐसे कर्म है जैसे आध्यात्मिक कर्म है, आध्यात्मिक ज्ञान में उन्नति, कर्म करो, आप भगवान का नाम लो, भगवान की भक्ति करो, लेकिन उनके फलों में कभी भी रुचि मत, आसक्ति मत रखो, फलों में आसक्ति नहीं होगी तो इसी को त्याग कहते हैं। आशय समझ में आया होगा, जैसे जैसे आगे पढ़ते जाएंगे ना इस चीज को, इस टॉपिक को भगवान बहुत ही क्लियर करेंगे। आप सब साथ रहिएगा, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।